تکوین 24واں باب
اسحاق اور رفقہ۔ اور ابراہیم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا، اور خداوند نے سب باتوں میں ابراہیم کو برکت بخشی، اور ابراہیم نے اپنے گھر کے پیر سالہ نوکر کو جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا، اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ، اور میں تجھ سے خداوند کی جو آسمان کا خدا اور زمین کا خدا ہے قسم لوں گا کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں میں رہتا ہوں میرے بیٹے کے لیے بیوی نہ لینا، بلکہ تو میرے وطن اور میرے رشتے داروں میں جائے گا اور میرے بیٹے اسحاق کے لیے بیوی لائے گا۔ نوکر نے اسے کہا کہ شاید وہ عورت اس ملک میں میرے ساتھ آنے پر راضی نہ ہو، تو کیا میں تیرے بیٹے کو اس زمین میں جہاں سے تو نکل آیا پھر لے جاؤں؟ تب ابراہیم نے اسے کہا، خبردار، تو میرے بیٹے کو وہاں نہ لے جانا، خداوند آسمان کا خدا جو مجھے میرے باپ کے گھر اور جائے پیدائش سے نکال لایا اور مجھ سے ہم کلام ہوا، اور جس نے قسم کھا کر مجھ سے کہا کہ میں تیری نسل کو یہ زمین دوں گا، وہ تیرے آگے آگے اپنا فرشتہ بھیجے گا کہ تو وہاں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لائے، اور اگر وہ عورت تیرے ساتھ آنے پر راضی نہ ہو تو میری اس قسم سے چھوٹ جائے گا، پر میرے بیٹے کو وہاں نہ لے جانا۔ پس اس نوکر نے اپنا ہاتھ اپنے آقا ابراہیم کی ران کے نیچے رکھا اور اس بات پر اس سے قسم کھائی۔
تب اس نوکر نے اپنے آقا کے اونٹوں میں سے 10 اونٹ لیے اور اپنے آقا کی سب اچھی چیزوں میں سے اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوا اور چل کر آرام نہرائم میں نہور کے شہر تک گیا، اور شام کو جس وقت عورتیں پانی بھرنے آتی تھیں اس نے اس شہر کے باہر کنویں کے نزدیک اپنے اونٹوں کو بٹھایا اور کہا، کیا خداوند میرے آقا ابراہیم کے خدا، تو آج مجھے کامیابی دے اور میرے آقا ابراہیم پر مہربانی کر، دیکھ میں پانی کے چشمے پر کھڑا ہوں اور شہر کے لوگوں کی بیٹیاں پانی بھرنے آتی ہیں، پس یوں ہونے دے کہ وہ لڑکی جسے میں کہوں کہ اپنا گھڑا اتار تاکہ میں پیوں، اور وہ کہے کہ پی، اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلاؤں گی، تو وہ وہی ہو جسے تو نے اپنے بندے اسحاق کے لیے ٹھہرایا ہے، اور اسی سے میں جانوں گا کہ تو نے میرے آقا پر مہربانی کی ہے۔ اور ایسا ہوا کہ پیشتر اس سے کہ اس نے یہ باتیں کی، دیکھو رفقہ جو ابراہیم کے بھائی ناہور کی بیوی ملکہ کے بیٹے بتویل سے پیدا ہوئی تھی آ گئی، اور گھڑا اس کے کندھے پر تھا، اور وہ لڑکی نہایت خوبصورت اور کمواری اور مرد سے ناواقف تھی۔ وہ اس چشمے میں اتری اور اپنا گھڑا بھر کر اوپر آئی، तब वो नौकर उसे मिलने को आगे बढ़ा और बोला कि अपने घड़े में से मुझे थोड़ा सा पानी पिला। वो बोली, ए अक्का, पी ले। और उसने जल्दी से घड़ा हाथ पर उतारा और उसे पिलाया। जब उसे पिला चुकी तो बोली कि मैं तेरे ऊंटों के लिए भी पानी भरूंगी जब तक कि वो पानी पी चुके। और उसने जल्दी से अपने घड़े का पानी हौज में डाल दिया और फिर कुएं की तरफ पानी भरने दौड़ी गई और उसके सब ऊंटों के लिए भरा। और वो मर्द सोचता हुआ खामोशी से उसे देखता रहा ताकि जाने कि खुदावन ने उसका सफर कामयाब किया है या नहीं। जब ऊंट पी चुके तो उस शख्स ने आधे मिसकाल सोने की एक नथ और 10 मिसकाल सोने के 2 कड़े उसके हाथ के लिए निकाले
और उससे कहा कि तू किसकी बेटी है, मुझे बता। क्या तेरे बाप के घर में हमारे रात रहने के लिए जगह है? उसने जवाब में कहा कि मैं बतोइल की बेटी हूं जो मिल्का से नाहूर के लिए पैदा हुआ। और उसने ये भी कहा कि हमारे पास भूसा और चारा बहुत है और रात काटने के लिए जगह भी है। तब उस आदमी ने झुककर खुदावन को सजदा किया और कहा कि खुदावन मेरे आका इब्राहिम का खुदा मुबारक हो जिसने मेरे आका को अपने करम और अपनी वफा से महरूम नहीं रखा और मुझे मेरे आका के भाई के घर की राह दिखाई। तब वो लड़की दौड़ी और अपनी मां के घर में सब हाल बताया। और रिफ्का का एक भाई था जिसका नाम लाबिन था, वो बाहर चश्मे पर उस शख्स के पास दौड़ा गया। जब उसने वो नथ और अपनी बहन के हाथों में कड़े देखे और अपनी बहन रिफ्का की बातें सुनी जो कहती थी कि उस आदमी ने मुझसे यूं यूं कहा, वो उस शख्स के पास आया जो ऊंटों के नजदीक चश्मे पर खड़ा था और कहा, ऐ तू जो खुदावंद की तरफ से मुबारक है, तू घर में आ, किस लिए बाहर खड़ा है? मैंने घर और ऊंटों के लिए भी मुकाम तैयार किया है। और वो उस शख्स को घर में लाया और ऊंटों को खोला और उन्हें भूसा और चारा डाला और उसके पांव और उसके साथियों के पांव धोने का पानी दिया। फिर खाना उसके आगे रखा गया, पर वो बोला कि मैं जब तक अपनी बात ना कहूं ना खाऊंगा। वो बोला, कह। उसने कहा कि मैं इब्राहिम का नौकर हूं
और खुदावन ने मेरे आका को बहुत बरकत दी और वो बड़ा आदमी है और उसने उसे भेड़ बकरियां और गाय बैल और सोना चांदी और लौंडियां और गुलाम और ऊंट और गधे बख्शे हैं। और मेरे आका की बीवी सारा से बुढ़ापे में उसके लिए बेटा पैदा हुआ और उसने अपना सब कुछ उसी को दे दिया। और मेरे आका ने यह कहकर मुझसे कसम ली कि तू किनानियों की बेटियों में से जिनके मुल्क में मैं रहता हूं किसी को मेरे बेटे की बीवी बनाने के लिए ना लेना, बल्कि तू मेरे बाप के घर मेरे रिश्तेदारों के पास जाना और मेरे बेटे के वास्ते बीवी लेना। तब मैंने अपने आका से कहा, शायद वो औरत मेरे साथ ना आए। तब उसने मुझे कहा कि खुदावंद जिसके हजूर मैं चलता हूं अपना फरिश्ता तेरे साथ भेजेगा और वो तुझे राह में कामयाब करेगा। तू मेरे रिश्तेदारों और मेरे बाप के घर में से मेरे बेटे के लिए बीवी ला, और जब तू मेरे रिश्तेदारों के पास पहुंचे तब तू मेरी कसम से छूटेगा। पर अगर वो तुझे ना दें तो भी तू मेरी कसम से छूटा। बस आज मैं इस चश्मे पर आया और कहा कि ऐ खुदावंद मेरे आका इब्राहिम के खुदा, अगर तू मेरे सफर को जो मैं करता हूं मुबारक करे तो देख के मैं पानी के चश्मे के पास खड़ा हूं और वो कंवारी जो पानी भरने निकले, और मैं उसे कहूं कि अपने घड़े में से मुझे थोड़ा सा पानी पीने को दे, और वो मुझे कहे कि तू पी और मैं तेरे ऊंटों के लिए भी भरूंगी, तो वो वही औरत हो जिसे खुदावन ने मेरे आका के बेटे के लिए मुकरर किया है। और मैं अपने दिल में ये बात कह ही रहा था कि देखो, रिफ्का अपने कंधे पर घड़ा लिए बाहर निकली और चश्मे में उतरी और पानी भरा। तब मैंने उससे कहा, मुझे पानी पिला। तो उसने जल्दी से घड़ा उतारा और बोली कि पी ले, और मैं तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। चुनाचे मैंने पिया और उसने मेरे ऊंटों को भी पिलाया। तब मैंने उससे पूछा और कहा कि तू किसकी बेटी है? वो बोली कि मैं बतूएल बिन नाहूर की बेटी हूं, जो मिल्का से उसके लिए पैदा हुआ, और मैंने नथ उसकी नाक में और कड़े उसके हाथों में पहनाए, और मैंने झुककर खुदावंद को सजदा किया। और खुदावंद अपने आका इब्राहिम के खुदा को मुबारक कहा, जिसने मुझे सीधी राह दिखाई ताकि अपने आका के भाई की बेटी उसके बेटे के वास्ते लूं। सो अगर तुम मेहरबानी और रास्ती से मेरे आका के साथ पेश आना चाहते हो तो मुझसे कहो, और अगर नहीं तो भी मुझसे कहो, ताकि मैं दहने या बाएं हाथ फिरूं।
तब लाबिन और बतूएल ने जवाब में कहा कि ये बात खुदावंद की तरफ से है, इसमें हम तुझे कुछ भला या बुरा नहीं कह सकते। देख, रिफ्का तेरे सामने है, उसे ले और जा, और जैसा के खुदावंद ने कहा है वो तेरे आका के बेटे की बीवी होगी। और यूं हुआ कि जब इब्राहिम के नौकर ने उनकी बातें सुनी तो जमीन पर झुककर खुदावंद को सजदा किया, और नौकर ने चांदी के बर्तन और सोने के बर्तन और पोशाकें निकाली और रिफ्का को दी, और उसके भाई और उसकी मां को भी कीमती चीजें अता की, और उसने और उन लोगों ने जो उसके साथ थे खाया पिया और रात वहीं रहे। सुबह को वो उठे और उसने कहा कि मुझे मेरे आका की तरफ रवाना करो, और उसके भाई और उसकी माँ ने कहा कि लड़की को 10 रोज कम से कम हमारे पास रहने दे, बाद उसके वो जाएगी। उसने उन्हें कहा कि मुझे ना रोको, कि खुदावंद ने मेरा सफर मुबारक किया, मुझे रुखसत करो ताकि मैं अपने आका के पास जाऊं। वो बोले, हम लड़की को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो क्या कहती है। तब उन्होंने रिफ्का को बुलाया और उससे कहा, क्या तू इस शख्स के साथ जाएगी? वो बोली, मैं जाऊंगी। तब उन्होंने अपनी बहन रिफ्का और उसकी दाई और इब्राहीम के नौकर और उसके साथ के लोगों को रुखसत किया, और उन्होंने रिफ्का को दुआ दी और उससे कहा, ऐ ख्वाहिर, तू हजारों लाखों की माँ हो और तेरी नस्ल अपने अदा के दरवाजों पर हुक्मरान हो। और रिफ्का और उसकी लौंडियां उठकर ऊंटों पर चढ़ीं और उस आदमी के साथ चलीं, और वो रिफ्का को लेकर रवाना हुआ। और इसहाक बेर लही रुई की राह से आता था, क्योंकि वो नजबा के मुल्क में रहता था। और इसहाक शाम के वक्त ध्यान करने को मैदान में गया, और उसने अपनी आंखें उठाई और नजर की तो देखो, ऊंट चले आते हैं। और रिफ्का ने अपनी आंखें उठाई और इसहाक को देखकर ऊंट पर से उतर पड़ी, क्योंकि उसने उस नौकर से पूछा था कि ये शख्स जो मैदान में हमसे मिलने को आता है कौन है। और उस नौकर ने कहा था कि ये मेरा आका है। और उसने निकाब लिया और उससे अपने आप को छुपाया, और नौकर ने सब कुछ जो किया था इसहाक से बयान किया। और इसहाक उसे अपनी माँ सारा के खेमे में लाया और रिफ्का को लिया, और वो इसकी बीवी हुई, और उसने उसे प्यार किया यहां तक कि अपनी माँ के मरने के गम से तसल्ली पाई।